नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन नट ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। माइकल अल्बाडा की पुस्तक बिल्डिंग एप्लीकेशंस विद एआई एजेंट्स, डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग मल्टी एजेंट सिस्टम्स। एआई एजेंट आधारित सॉफ्टवेयर के निर्माण पर एक व्यावहारिक तकनीकी परिचय है। इसका विषय केवल किसी भाषा मॉडल से उत्तर बनवाना नहीं, बल्कि ऐसे अनुप्रयोगों की रूपरेखा तैयार करना है जिनमें मॉडल, उपकरण, ज्ञान, स्मृति और सीखने की प्रक्रियाएं मिलकर कठिन तथा अस्पष्ट कार्य पूरे करें। पुस्तक एकल एजेंट से आरंभ करके बहु एजेंट प्रणालियों तक जाती है, जहां अलग भूमिकाओं वाले एजेंट साझा लक्ष्य के लिए समन्वय करते हैं। अल्बाडा का मुख्य जोर डिजाइन निर्णयों पर है, जैसे किस काम में एजेंट उपयोगी है, किसे निश्चित वर्कफ्लो रखना चाहिए, उपकरणों का चयन कैसे हो और आउटपुट को तैनाती से पहले कैसे जांचा जाए। इसमें लैंगग्राफ, लैंगचेन और ऑटोजेन जैसे फ्रेमवर्कों के माध्यम से तुलना भी शामिल है। इसलिए यह पुस्तक एआई एजेंटों को रहस्यमय स्वचालन नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग, मूल्यांकन और निगरानी मांगने वाले सॉफ्टवेयर पैटर्न के रूप में प्रस्तुत करती है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, एआई एजेंट को मॉडल नहीं, उपकरणों और स्मृति से युक्त प्रणाली के रूप में समझना पुस्तक का बुनियादी योगदान एआई एजेंट की सीमा स्पष्ट करना है। एक फाउंडेशन मॉडल अपने आप में पाठ या अन्य सामग्री उत्पन्न कर सकता है, लेकिन एजेंट तब बनता है जब उसे किसी लक्ष्य के संदर्भ में निर्णय लेने, जानकारी पाने, उपकरण चलाने, बीच के परिणाम संभालने और आगे की कार्रवाई चुनने की संरचना दी जाए। इस दृष्टि में उपकरण बाहरी दुनिया तक पहुंच देते हैं, ज्ञान सही संदर्भ देता है, स्मृति पहले की स्थिति और उपयोगकर्ता की जरूरतें संभालती है तथा सीखने की विधियां प्रदर्शन सुधारने का मार्ग देती हैं। यह भेद उपयोगी है क्योंकि हर समस्या को स्वायत्त एजेंट बनाने से विश्वसनीयता नहीं बढ़ती। कई कामों में निर्धारित चरण, नियम आधारित जांच या साधारण पुनर्प्राप्ति बेहतर हो सकती है। पुस्तक इसीलिए एजेंट को एक डिजाइन पैटर्न मानती है, कोई सार्वभौमिक समाधान नहीं। डेवलपर के लिए इसका व्यावहारिक अर्थ है कि वह पहले कार्य की अनिश्चितता, आवश्यक उपकरण, त्रुटि की लागत और मानव अनुमोदन की जरूरत का आकलन करे, फिर मॉडल को केवल भाषा उत्पादन की भूमिका न देकर स्पष्ट सीमाओं वाले नियंत्रित कार्य चक्र में रखे। यह सोच डेमो और उत्पादन योग्य अनुप्रयोग के अंतर को समझने में मदद करती है। दूसरा, एकल एजेंट से बहु एजेंट समन्वय तक भूमिका विभाजन के वास्तविक लाभ और जोखिम। बहु एजेंट प्रणाली का आकर्षण यह है कि जटिल कार्य को शोध, योजना, निष्पादन, समीक्षा या विशेष डोमेन निर्णय जैसी अलग जिम्मेदारियों में बांटा जा सकता है। पुस्तक इस परिवर्तन को केवल अधिक एजेंट जोड़ने की प्रक्रिया नहीं मानती। उपयोगी विभाजन तभी होता है जब किसी भूमिका के पास अलग उपकरण, अलग ज्ञान, अलग सत्यापन पद्धति या अलग निर्णय अधिकार हो। उदाहरण के लिए, जानकारी खोजने वाला घटक और अंतिम उत्तर की जांच करने वाला घटक अलग रखे जा सकते हैं, जिससे एक ही मॉडल की प्रारंभिक धारणा बिना जांच के अंतिम उत्तर न बन जाए। लेकिन प्रत्येक अतिरिक्त एजेंट संदेशों, विलंब, लागत और विफलता के नए बिंदु भी जोड़ता है। एजेंटों को कौन बुलाएगा, उनके बीच जानकारी किस प्रारूप में जाएगी, मतभेद कैसे सुलझेंगे और कार्य कब समाप्त घोषित होगा, ये डिजाइन प्रश्न केंद्रीय हो जाते हैं। पुस्तक का जोर ऐसे व्यापारिक संतुलनों पर है। इसका व्यावहारिक निष्कर्ष है कि बहु एजेंट ढांचा वहां उचित है जहां विशेषज्ञता या स्वतंत्र सत्यापन परिणाम की गुणवत्ता बढ़ाए। यदि काम सीधा और सीमित है तो एकल एजेंट अथवा नियंत्रित वर्कफ्लो अक्सर अधिक सरल, सस्ता और जांचने योग्य विकल्प रहेगा। तीसरा, उपकरण चयन। ज्ञान और स्मृति की संरचना से एजेंट की विश्वसनीयता बनाना। एजेंट की उपयोगिता उसके भाषा कौशल से अधिक इस बात पर निर्भर करती है कि वह सही समय पर सही संसाधन तक पहुंचे और प्राप्त जानकारी का सुरक्षित उपयोग करे। पुस्तक उपकरण चयन, स्मृति की संरचना और आउटपुट सत्यापन को प्रमुख डिजाइन निर्णयों के रूप में रखती है। उपकरणों में एपीआई, डेटाबेस, खोज, उद्यम प्रणालियां या अन्य सेवाएं आ सकती है। इनके लिए स्पष्ट इनपुट, सीमित अनुमतियां, त्रुटि प्रबंधन और परिणाम की जांच जरूरी है, क्योंकि गलत उपकरण कॉल वास्तविक नुकसान या भ्रामक उत्तर दे सकती है। ज्ञान के मामले में एजेंट को केवल व्यापक मॉडल ज्ञान पर निर्भर नहीं होना चाहिए, विशेषकर जब कार्य संगठन की ताजा या निजी जानकारी से जुड़ा हो। स्मृति भी एक ही चीज नहीं है, तात्कालिक कार्यस्थिति, वार्तालाप का संदर्भ और अपेक्षाकृत स्थायी उपयोगकर्ता या प्रक्रिया संबंधी जानकारी अलग जरूरतें रखते हैं। इन्हें बिना भेद के जमा करने से संदर्भ अव्यवस्थित, महंगा और गोपनीयता की दृष्टि से जोखिमपूर्ण हो सकता है। पुस्तक का डिजाइन केंद्रित रुख डेवलपर को यह पूछने के लिए प्रेरित करता है कि कौन सी जानकारी कब रखनी है, कब हटानी है और अंतिम परिणाम को किस नियम, स्रोत या मानव समीक्षा से मान्य करना है। चौथा, लैंगग्राफ, लैंगचेन और ऑटोजेन की तुलना को फ्रेमवर्क चयन की प्रक्रिया बनाना। एजेंट विकास का क्षेत्र तेज गति से बदलता है, इसलिए किसी एक फ्रेमवर्क को अंतिम उत्तर मानना व्यावहारिक नहीं है। पुस्तक की अलग पहचान यह है कि यह कई प्रमुख फ्रेमवर्कों के बीच तुलनात्मक दृष्टि देती है, विशेष रूप से लैंगग्राफ, लैंगचेन और ऑटोजेन के संदर्भ में। इसका उद्देश्य केवल सिंटैक्स सिखाना नहीं, बल्कि यह दिखाना है कि समान प्रकार की समस्या को विभिन्न अमूर्तताओं के साथ कैसे सोचा जा सकता है। किसी टीम के लिए ग्राफ आधारित नियंत्रण उपयोगी हो सकता है, जहां अवस्थाएं, शाखाएं और पुनः प्रयास स्पष्ट हों। दूसरी टीम को उपकरण एकीकरण या एजेंट संवाद के लिए अलग ढांचे की सुविधा अधिक महत्वपूर्ण लग सकती है। सही चयन टीम की भाषा, मौजूदा ढांचे, निगरानी की जरूरत, तैनाती वातावरण और भविष्य में बदलाव की क्षमता पर निर्भर करेगा। तुलना का मूल्य यह है कि डेवलपर लोकप्रियता के बजाय अपनी समस्या के अनुसार निर्णय ले सके। साथ ही पुस्तक अप्रत्यक्ष रूप से एक सावधानी भी सिखाती है। फ्रेमवर्क विशेष कोड और इंटरफेस शीघ्र बदल सकते हैं, इसलिए दीर्घकालिक प्रणाली को स्पष्ट एजेंट सीमाओं, परीक्षण योग्य कार्य अनुबंधों और पोर्टेबल डिजाइन सिद्धांतों पर टिकाना चाहिए। यही दृष्टि तकनीकी बदलाव के बीच रखरखाव आसान बनाती है। अंत में मानव सहयोग, मूल्यांकन, निगरानी और सुरक्षा को तैनाती के अनिवार्य हिस्से मानना। पुस्तक एजेंट को उपयोगकर्ता से अलग चलने वाली स्वायत्त मशीन नहीं मानती। मानव एजेंट सहयोग और इंटरफेस डिजाइन पर उसका ध्यान इस तथ्य को स्वीकार करता है कि कई उच्च प्रभाव वाले कार्यों में उपयोगकर्ता को लक्ष्य स्पष्ट करने, मध्यवर्ती काम देखने, दिशा बदलने और अंतिम कार्रवाई मंजूर करने का अवसर चाहिए। अच्छा इंटरफेस केवल उत्तर दिखाने तक सीमित नहीं रहता। उसे यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि एजेंट ने क्या किया, किन स्रोतों या उपकरणों का उपयोग किया, कहां अनिश्चितता है और उपयोगकर्ता किस बिंदु पर हस्तक्षेप कर सकता है। बाद के विषयों में मॉडल सुधार की विधियां जैसे फाइन ट्यूनिंग, सुपरवाइज्ड फाइन ट्यूनिंग, डायरेक्ट प्रेफरेंस ऑप्टिमाइजेशन और रीइन्फोर्समेंट लर्निंग प्रदर्शन सुधारने के अलग साधन के रूप में सामने आते हैं, पर इन्हें केवल अधिक डेटा जोड़ने का उपाय नहीं समझना चाहिए। सुधार से पहले मापन आवश्यक है, ताकि पता चले कि समस्या निर्देश, उपकरण, ज्ञान, मॉडल व्यवहार या इंटरफेस में कहां है। उत्पादन में निगरानी, सुरक्षा और आउटपुट जांच इसलिए जरूरी है कि एजेंट के निर्णय बदलते डेटा, मॉडल और उपकरणों के बीच लगातार जांचे जा सके। यह अध्यायगत दृष्टि एजेंट निर्माण को जिम्मेदार सॉफ्टवेयर संचालन से जोड़ती है। निष्कर्ष में, बिल्डिंग एप्लीकेशंस विद एआई एजेंट्स उन सॉफ्टवेयर डेवलपरों, डेटा वैज्ञानिकों, मशीन लर्निंग इंजीनियरों और तकनीकी टीमों के लिए सबसे उपयोगी है जो एआई एजेंटों के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं और केवल आकर्षक प्रदर्शन के बजाय व्यवस्थित अनुप्रयोग बनाना चाहते हैं। पाठक को यह समझ मिलती है कि एजेंट कब उचित है, एकल और बहु एजेंट डिजाइन के बीच चयन कैसे किया जाए, उपकरण तथा स्मृति को कैसे व्यवस्थित किया जाए और उत्पादन में गुणवत्ता, सुरक्षा तथा मानव नियंत्रण को क्यों शामिल करना चाहिए। ई कॉमर्स, वित्तीय सेवाओं, स्वास्थ्य सेवा, आईटी सहायता, कानूनी कार्य, सुरक्षा संचालन और आपूर्ति श्रृंखला जैसे क्षेत्रों का उल्लेख इसकी उपयोगिता को केवल एक डोमेन तक सीमित नहीं रहने देता। फिर भी यह पुस्तक किसी पूर्ण तैयार कोड परियोजना की अपेक्षा रखने वाले पाठक के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती, क्योंकि इसका झुकाव सिद्धांत, डिजाइन विकल्प और फ्रेमवर्क तुलना की ओर अधिक है। यही इसकी सीमा और विशिष्टता दोनों है। कई एजेंट पुस्तकें किसी एक टूल का त्वरित उपयोग सिखाती हैं, जबकि अल्बाड़ा अलग फ्रेमवर्कों के पीछे के व्यापारिक संतुलनों पर ध्यान देते हैं। फ्रेमवर्क तेजी से बदलने पर भी यह निर्णय केंद्रित दृष्टि अपेक्षाकृत टिकाऊ रहती है, इसलिए इसे दस्तावेजों, प्रयोगों और अद्यतन फ्रेमवर्क सामग्री के साथ पढ़ना सबसे व्यावहारिक रहेगा। सही पाठक के लिए यह पुस्तक एजेंट निर्माण की शब्दावली, वास्तु संबंधी सोच और मूल्यांकन अनुशासन को एक साथ जोड़ने वाला मजबूत आरंभिक आधार प्रदान करती है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं माइकल अल्बाड़ा, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।